प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर यरूशलेम को विनाश करना चाहता है क्योंकि वहां के लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे थे, अर्थात वे फल जिसे परमेश्वर उनसे उम्मीद कर रहा था वे नहीं ला रहे थे। मित्रों, आज हम यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करते हैं, जिसका शीर्षक है यरूशलेम की तुलना एक छोड़े हुए शिशु से जिसे परमेश्वर ने गोद लिया है की गई है। अध्याय 16 में एक और दृष्टांत है कि एक छोड़ा हुआ शिशु एक गंदा मैला कुचेला बच्चा जिसके लिए कुछ नहीं किया गया है उसके बारे में हम देखते हैं। आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए यहेजकेल 16 अध्याय उसका एक पद। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहेजकेल हमें भूलने नहीं देगा कि वह परमेश्वर का वचन सुना रहा है। हम चाहे उसे स्वीकार न करें परंतु वह परमेश्वर का वचन है। यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय के दो पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे। यह अनाथ बच्चा कौन है, यह मैला कुचेला बच्चा कौन है जिसे बाहर फेंक दिया गया है, यह अवैधानिक संतान कौन है। यह यरूशलेम नगर है जिसे परमेश्वर ने छोड़ दिया है। यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय के तीन पद में लिखा है, और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझ से यूं कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश में से हुई, तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। यह पद इसराइल की उत्पत्ति या अब्राहम और सारा के विषय में कुछ नहीं कहता। यहां यरूशलेम की स्थापना के समय की चर्चा की जा रही है। यरूशलेम का इतिहास है कि वह एमोरियों का नगर था। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, पर वे अर्थात इसराइल के वंशज चौथी पीढ़ी में यहां फिर आएंगे क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। यरूशलेम हित्तियों का नगर भी था। हित्ती एक महान जाति थे जो उस संपूर्ण क्षेत्र पर कभी राज्य किया करते थे। यह यरूशलेम की पृष्ठभूमि है और इसमें घमंड करने की कोई भी बात नहीं है। यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय के 4 और 5 पद में लिखा है, तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। वह एक अनाथ शिशु की नाई छोड़ दी गई थी। उसका सुधी लेने वाला कोई भी नहीं था। आगे हम देखते हैं यहेजकेल 16 अध्याय के 6 से 8 पद में, जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लोटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लोटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझ ही से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडोल हुई और तेरे बाल बढ़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर यरूशलेम से कहता है कि मैंने तुझे गोद लेकर अपनी संतान बनाया। तब हम देखते हैं यहेजकेल 16 उसके 9 से 11 पद में, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। मेरे मित्रों, वह कहता है मैंने यरूशलेम के लिए यह सब कुछ किया। मेरे विचार में यहाँ हमारे जीवन के लिए प्रासंगिकता स्पष्ट है। हमारी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। आदम और हवा ने पाप किया और हमारा जन्म अपराध में हुआ। भजन संहिता 51:5 में दाऊद कहता है, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। दाऊद आपसे और मुझसे अलग नहीं है, अतः हम किस बात का घमंड करें। हमारी पृष्ठभूमि यही है कि हम पाप और अपराध में मरे हुए थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने यरूशलेम के लिए क्या किया? परमेश्वर ने उससे कहा जीवित रह। हमें परमेश्वर कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसके 7 पद में, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। उसने वाचा बांधी है, यदि आप प्रभु यीशु में विश्वास करें तो वह आपका उद्धार करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 पद में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, परमेश्वर ने उस अशुद्ध अवैधानिक शिशु को अपने लहू में जोड़ा और कहा, तब मैंने तुझे जल से नहलाकर। इसी प्रकार हम भी नए जन्म का स्नान और पवित्र आत्मा के नवीकरण का अनुभव पा सकते हैं। तुझ पर से लहू धो दिया, प्रभु यीशु ने क्रूस पर मेरे पाप उठा लिए और आज परमेश्वर की संतान पर लहू का दोष नहीं है। और तेरी देह पर तेल मला, वह आज परमेश्वर की संतान का पवित्र आत्मा से अभिषेक करता है। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र पहनाए। हम प्रभु यीशु की धार्मिकता से ढांके जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो पाए। परंतु उस नगर ने क्या किया? परमेश्वर कहता है कि जब वह युवा अवस्था में आकर सुंदर हो गई तो उसने वेश्यावृत्ति अपनाई। उसने मूर्ति पूजा करके परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। परमेश्वर उन विश्वासियों पर दया करे जो एक कटोरी दाल के लिए संसार के हाथों बिक जाते हैं, जैसा कि एसाव भी सस्ते में बिक गया था। इसी प्रकार अनेक विश्वासी संसार के हाथों सस्ते में बिक जाते हैं। मेरे प्रियो, हम में से अनेकों को खरीदने के लिए शैतान तैयार है। हम बार बार परमेश्वर से दूर, उसकी सहभागिता से दूर भागते हैं। ओह, इस समय परमेश्वर के निष्ठावान हों, उसके निकटता में आप दृढ़ता से बने रहें। यहेजकेल 16:53-55 पद में हम पढ़ते हैं, जब मैं उनको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम और शोमरोन को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे बंदियों को भी लौटा लाऊंगा, जिससे तू लजाती रहे और अपने सब कामों को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनकी शांति ही का कारण हुई है। तेरी बहिने सदोम और शोमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेंगी और तू भी अपनी पुत्रियों सहित अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी। पद 13 और 55 और अध्याय 37 को आधार बनाकर अनेक पंथ सिखाते हैं कि अंततः सबको उद्धार मिलेगा। यहां भी वही बात है कि एक पद को अलग करके विचित्र शिक्षा का प्रतिवादन करना जो बाइबल की शिक्षा नहीं है। यहेजकेल 37 अध्याय के 12 पद में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इसराइल के देश में पहुंचाऊंगा। यहां परमेश्वर दुष्ट के पुनरुत्थान और उसके अनंत जीवन में प्रवेश करने की बात नहीं कर रहा है। दोनों ही स्थानों में वह उनके स्वदेश लौट आने की बात कह रहा है। उसका संदर्भ उनसे नहीं जो वहां वर्षों पूर्व रहते थे। यहां अध्याय 16 में वह कह रहा है कि सदोम नगर पुनः स्थापित होगा। मैं तो वहां किसी को आकर्षित करने वाली बात नहीं देखता हूं। मेरे प्रियो, मृत सागर के तट पर वहां महान विकास हो रहा है। अध्याय 37 में परमेश्वर इसराइल के पुनरुद्वार की भी चर्चा करता है। पुराने नियम में हमारे पास नए नियम की नई भावी परिस्थितियों का दिव्य प्रकाश नहीं है। परमेश्वर का ऐसा कोई विचार नहीं है कि पुराने नियम को भक्त जनों का मृत्यु को थान करके उन्हें उस स्थान पर ले जाए जहां उसने हमारे लिए जगह तैयार की है। उसने उनसे कहा कि उनके लिए यहां पृथ्वी पर ही स्वर्ग होगा। अब्राहम इसी पुनरुत्थान की प्रतीक्षा में था। इसराइल का पुनरुद्वार होगा। आप पुराने नियम के इस अंश में नए नियम की शिक्षा को समाविष्ट नहीं कर सकते, तथापि प्रत्येक पुराने नियम का संदर्भ नए नियम की शिक्षा के मेल में है। नया नियम स्पष्ट बताता है कि पुनरुत्थान दो हैं, उद्धार पाए हुओं का पुनरुत्थान और खोए हुओं का पुनरुत्थान। अतः ये पद इसराइल के पुनरुद्वार के संबंध में है। हमें उनके संदर्भ में उन्हें समझाना है और आवश्यकता से अधिक उनका अर्थ नहीं निकालना है। मेरे मित्रों, यह अध्याय अति महिमामय उपसंहार प्रस्तुत करता है। परमेश्वर इसराइल देश के साथ बांधी अपनी वाचा पूरी करेगा। उनका विद्रोह, आज्ञा न मानना और परमेश्वर से फिर जाना परमेश्वर की वाचा को न तो निरस्त कर पाएगा और न ही उसका उन्मूलन कर पाएगा। हम पढ़ते हैं यहेजकेल की पुस्तक 16 अध्याय उसके 60 से 63 पद में लिखा हुआ है, तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। जब तू अपनी बहनों को अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा और तब तू जान लेगे कि मैं यहोवा हूँ जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले। यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि वह अपनी पूर्व की वाचा को ही पूरा नहीं करेगा वरन उनके साथ नई वाचा भी बांधेगा। दुर्भाग्य से धर्मशास्त्र के ये अंश अधिक अध्ययन का केंद्र नहीं है। यदि इन्हें ध्यान से पढ़ा जाए तो समझ में आ जाता है कि परमेश्वर को अब भी इसराइल के साथ भावी प्रयोजन है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 18 से जारी रखेंगे। हम इसमें देखेंगे उकाबों की पहली। इसराइल के घराने से यह पहली और दृष्टांत कह, क्योंकि वे सुनते नहीं थे इसलिए यहेजकेल को यह असामान्य विधि काम में लेना पड़ा। यहेजकेल के पुस्तक 17 अध्याय उसके 3-5 पद में हम पढ़ते हैं, एक लंबे पंख वाले परों से भरे और रंग बिरंगे बड़े उका पक्षी ने लबानोन जाकर एक देवदार की फुनगी नोच ली। तब उसने उस फुनगी की सबसे ऊपर की पतली टहनी को तोड़ लिया और उसे लेन देन करने वालों के देश में ले जाकर व्यापारियों के एक नगर में लगाया। तब उसने देश का कुछ बीज लेकर एक उपजाऊ खेत में बोया और उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू के समान लगाया। यह बड़ा उका बेबीलोन और नबूकदनेस्सर के अतिरिक्त और कोई नहीं था। धर्मशास्त्र में अन्य स्थानों पर भी बेबीलोन के लिए उकाब की उपमा दी गई है। अध्याय 48 और पद 40 में यर्मिया नबूकदनेस्सर के लिए कहता है, देखो वह उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। तब वह 49 अध्याय के 22 में भी लिखता है, देखो वह उकाब के समान उड़कर निकल आएगा और बोस्त्रा पर अपने पंख फैलाएगा। और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय में दानियल ने बेबीलोन के राज्य को समुद्र से निकलते देखा, जो उकाब के पंख के लिए शेर की नाई था। अतः यहाँ यह बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर है जो आकर उस पेड़ को काटेगा। यह पेड़ कौन है? यह पेड़ इसराइल और विशेष करके दाऊद का राजवंश है। नबूकदनेस्सर उसका सर्वनाश करने आएगा। उसने सिदकिय्याह के साथ ठीक ऐसा ही किया था। यहेजकेल के पुस्तक 17 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से लिखा है, फिर एक और लंबे पंख वाला और परों से भरा हुआ बड़ा उकाब पक्षी था, और वह अंगूर की लता उस स्थान से जहां वह लगाई गई थी उस दूसरे उकाब की ओर अपनी जड़ फैलाने और अपनी डालियां झुकाने लगी कि वह उसे खींचा करे। मेरे प्रियो, यहां पर दूसरा उकाब मित्र है जो सिदकिय्याह के राज्य काल तक एक महाशक्ति था, और सिदकिय्याह ने नबूकदनेस्सर के साथ संधि की थी, परंतु संधि वार्ता तोड़कर मिस्र के साथ वह हो गया। दाखलता मिस्र की भूमि में लगाई गई थी और उससे पोषण प्राप्त करना चाहती थी, परंतु उसे पोषण नहीं मिलेगा क्योंकि मिस्र भी पराजित होगा। नबूकदनेस्सर ने मिस्र को भी उजाड़ दिया था और अपने अधीन कर लिया था। यहेजकेल के दृष्टांत का संदेश यह है। यहेजकेल की पुस्तक 17 अध्याय उसके 12 से 15 पद में, क्या तुम इन बातों का अर्थ नहीं समझते? फिर उनसे कह, बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को जाकर उसके राजा और अन्य प्रधानों को लेकर अपने यहां बेबीलोन में पहुंचाया। तब राजवंश में से एक पुरुष को लेकर उससे वाचा बांधी और उसको वश में रहने की शपथ खिलाई, और देश के सामर्थी पुरुषों को ले गया कि वह राज्य निर्बल रहे और सिर न उठा सके, वरन वाचा पालने से स्थिर रहे। तो भी इसने घोड़े और बड़ी सेना मांगने को अपने दूत मिस्र में भेजकर उससे विद्रोह किया। क्या वह फूले फलेगा? क्या ऐसे कामों का करने वाला बचेगा? क्या वह अपनी वाचा तोड़ने पर भी बच जाएगा? मेरे मित्रों, नबूकदनेस्सर ने तो अपनी ओर से वाचा का मान रखा, परंतु परमेश्वर की प्रजा ने वाचा तोड़ी। यह कैसा चित्रण है! कुछ कलीसियाओं में हम देखते हैं कि सदस्य बाइबल लेकर आराधना में आते हैं, परंतु उनके मन परमेश्वर से दूर हैं। आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। दूसरी ओर अविश्वासी उद्धार रहित मनुष्य सत्यनिष्ठ हैं। नबूकदनेस्सर आकर सिदकिय्याह को नष्ट कर देगा। यहेजकेल के पुस्तक 17 अध्याय उसके 18 पद में लिखा है, क्योंकि उसने शपथ को तुच्छ जाना और वाचा को तोड़ा। देखो, उसने वचन देने पर भी ऐसे ऐसे काम किए हैं, इसलिए वह बचने ना पाएगा। परमेश्वर कहता है कि सिदकिय्याह को दंड देना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मैं उन विश्वासियों के मध्य पाया जाना नहीं चाहता जिन्हें परमेश्वर उनके जीवन के कारण ताड़ना दे। परमेश्वर निश्चय ही दंड देगा। यहेजकेल 17 उसके 24 पद में लिखा हुआ है, तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा किया, हरे वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फुलाया फलाया। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर भी दिया है। कभी कभी परमेश्वर अपने लोगों को जो उससे दूर हो गए हैं अभक्तों द्वारा दंडित करता है। इस संसार में हमें शांति नहीं है, भीतरी हो या बाहरी हर जगह समस्या है। परमेश्वर कहता है कि हम पाप करके बच नहीं पाएंगे, दंड अवश्य मिलेगा। मेरे प्रियो, आज इसलिए मुझे और आपको सुधरने की आवश्यकता है। यहां पर अध्याय 17 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 18 में आते हैं, जिसका विषय है पाप की मजदूरी मृत्यु है, यरूशलेम इसका उदाहरण है। अध्याय 18 में परमेश्वर प्रकट करेगा कि वह प्रत्येक मनुष्य के साथ विशेष व्यवहार करेगा। आइए हम पढ़ें यहेजकेल 18 अध्याय उसका एक पद, लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहां पर फिर से स्पष्ट होता है कि यहेजकेल अपनी राय नहीं परमेश्वर का वचन सुना रहा है। यहेजकेल 18 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तुम लोग जो इसराइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के, इसका क्या अर्थ है? इसराइल में एक लोकोक्ति प्रचलित थी जो यिर्मयाह ने 2 बार काम में ली थी, 31 अध्याय उसके 29 पद में, उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे, पुरखा लोगों ने तो जंगली दाग खाई परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। फिर विलाप गीत 5 अध्याय के 7 पद में वह कहता है, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। मेरे विचार में उन्होंने निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 5 पद के आधार पर यह लोकोक्ति विकसित की थी, तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। उनकी समस्या यह है कि इस पद से उन्होंने यह लोकोक्ति विकसित तो की जो वास्तव में सही नहीं है। किसी पद को संदर्भ से निकालकर उसका अर्थ निर्धारण करने का यही संकट है। यह लोकोक्ति सही नहीं है कि पितरों ने जंगली दाग खाई और वंश को भुगतना पड़ा। एक सीमा तक तो यह सही है, परंतु परमेश्वर व्यक्ति विशेष को ही दंड देता है, वह चाहे पिता हो या पुत्र, उसके कर्मों के अनुसार ही वह दंड पाएगा। मेरे प्रियो, यह अनंत जीवन का दंड नहीं है, इस जीवन में ही वह दंड पाएगा जो परमेश्वर की आज्ञा न मानने का दंड है। हम यहेजकेल 18 के 3 पद में पढ़ते हैं, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इसराइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर न मिलेगा। वह कहता है मेरे जीवन की शपथ, या इसका अन्य रूप इस अध्याय में 13 बार आया है, और मर जाएगा यह 14 बार आया है। यहां हमारे लिए जीवन और मृत्यु को रखा गया है, परंतु यह अनंत जीवन और अनंत दंड नहीं है। जी हां, परमेश्वर इस जीवन में मनुष्य को दंड देने की चर्चा कर रहा है, अतः हमें इस दृष्टिकोण से इस संपूर्ण अध्याय का अध्ययन करना है। यहेजकेल 18 के 4 पद में हम पढ़ते हैं, देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर यहां कहता है कि प्रत्येक प्राणी उसका ही है। यदि पितरों का पाप किसी पर आता है तो वह इसलिए कि उन्होंने अपने पितरों की दुष्टता का मार्ग चुना है। प्रत्येक मनुष्य अपने पाप के कारण ही मारा जाएगा। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 24 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, पुत्र के कारण पिता न मारा जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए, जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य का न्याय करेगा। यहेजकेल 18 उसके 5-9 पद में हम पढ़ते हैं, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, न इसराइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, न पराई स्त्री को बिगाड़ा हो और न ऋतुमती के पास गया हो और न किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, न किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दी हो और नंगे को कपड़ा ओढ़ाया हो, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए की बढ़ती ली हो और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई से काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। न तो पहाड़ों के पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, अर्थात वह मूर्ति पूजा में सहभागी न हुआ हो, ऐसा पुरुष धर्मी जन है जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है, वह निश्चित जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। वह इस जीवन की बात कर रहा है, अनंत जीवन की नहीं। परमेश्वर उसे इस जीवन में आशीष देगा। यह पुराने नियम की आशीषें हैं। मेरे मित्रों, ये सारी बातें हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत लाभकारी हैं। यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु,
जय 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 यीशु।